الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم. رمضان کے اندر ہم تراویح کے بعد وتر پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں. رمضان کے علاوہ اکیلے اکیلے وتر پڑھتے ہیں. وتر کی نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. وہ تسبیح ہمیں بھی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے سلام پھیرا کر کے پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ تسبیح تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اسی لیے جماعت کے ساتھ ہم وتر پڑھے رمضان میں، یا پورا سال اکیلے وتر پڑھے، سلام پھرا کر کے تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے. وتر کے بعد دو رکعت نفل ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعت بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. ہم لوگوں کے لیے دونوں اختیار ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھو یا بیٹھ کر کے پڑھو. بیٹھ کر کے دو رکعت نفل پڑھیں گے اور اس میں نیت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے وتر کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ اس میں سنت کی اتباع کا ثواب بھی ملے گا. وتر کے بعد کی دو رکعت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دو رکعت تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے. صبح میں ہم سحری کے وقت تہجد پڑھیں گے، یہ بہت اچھی پیاری تہجد ہے. اور وتر کے بعد دو رکعت پڑھیں گے तो उसके अंदर भी तहज्जुद का सवाब है। रमजान के अंदर तो हमारे लिए आसान है कि सहरी के लिए उठते हैं, उस वक्त पर हम तहज्जुद की नमाज पढ़ लेवे और अल्लाह ताला के सामने दुआ भी मांग लेवे। साल के 11 महीने कोशिश ये करो कि सुबह सादिक से पहले उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। जो आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह की नजदीकी मिलेगी और अल्लाह के सालिहीन बंदों में वो हो जाएगा। और जब अल्लाह के साले और नेक बंदों की जमात में हो जाएंगे तो फिर सारी दुनिया के ईमान वाले हमारे लिए दुआ करेंगे। इसलिए कि हम नमाज के कायदे में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुह, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। कि जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए सलामती होवे। तो तहज्जुद पढ़ने की बरकत से सालिहीन और नेक बंदों की जमात में हो जाएंगे और सारी दुनिया के नमाजियों की दुआ इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला अता करेंगे। साल के 11 महीने अगर सुबह सादिक से पहले हम उठ जावे तो बहुत अच्छा है और तहज्जुद पढ़े, ये टॉप क्वालिटी की बेहतरीन तहज्जुद है। जो लोग सुबह के अंदर उठ नहीं सकते उनके लिए एक आसान तहज्जुद है। फतावा शामिया के अंदर इसकी तरतीब बहुत अच्छी बयान की गई और अल्लाह के नेक बंदों ने आसान तहज्जुद की एक तरतीब बतलाई है कि रमजान के सिवा ईशा की नमाज की फर्ज पढ़ी, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौकेदा पढ़ी, फिर 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लो, फिर 3 रकात वितर पढ़ लो, उसके बाद 2 रकात नफिल तहज्जुद की नियत से पढ़ लो। तो जो लोग सुबह उठ नहीं पाते उन लोगों के लिए इस तरतीब से पढ़ेंगे तो अभी अल्लाह ताला के यहां तहज्जुद पढ़ने वालों का सवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ये आसान तरतीब है तहज्जुद की। तो रमजान के अंदर सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ो, पूरा साल भी सुबह सादिक के वक्त तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो और ना पढ़ सको तो कम से कम ईशा के साथ तहज्जुद की नमाज अदा कर लो, उस पर भी इंशाअल्लाह तहज्जुद की फजीलत हासिल हो जाएगी। अब ये आसान तरतीब सामने आ गई, तमाम ईमान वाले नियत कर लेवे कि इंशाअल्लाह हम तहज्जुद के पाबंद हो जाएंगे। हदीस में यहां तक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद जो 2 रकात पढ़ते थे उसकी पहली रकात में इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा पढ़ते थे अल्हम्द के बाद, और दूसरी रकात के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे। तो ये भी याद कर लो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, खुसूसन नफिल नमाजों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा उसको पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। फराइज के अंदर भी मसनून किरात की पाबंदी करें और नवाफिल में भी मसनून किरात की कोशिश करें तो बड़ा सवाब अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा। तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद जो दो रकात नमाज पढ़ते थे तो उसमें पहली रकात में इदा जुलजिलत, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे। इसको याद करके उसको पढ़ने की आदत बना लो कि दो रकात नफिल पढ़ेंगे और ये भी पढ़े, कभी कुछ दूसरा भी पढ़ लेवे। अल्लाह ताला हम सबको वितर की नमाज और तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। कुरान मजीद की आयत आपके सामने शुरू में पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो। इसराफ का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो, जितने में काम बन जाता हो इतने में काम बना लो। जरूरत से ज्यादा खर्च करना ये इसराफ कहलाता है और अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद करते नहीं हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसराफ करने वालों को अल्लाह मोहब्बत की नजर से नहीं देखते। बाज मरतबा हम गफलत के अंदर बहुत इसराफ करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे उसकी एक शक्ल में आपको बतलाऊं, वुजू करने बैठे, इधर नल खोल दिया फूल और इधर बातचीत कर रहे हैं मोबाइल पर या बाजू वाले के साथ और ये पानी वेस्टेज जा रहा है, ये गलत काम हो रहा है। जरूरत के मुताबिक पानी लेकर के वुजू करो। हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना हमने कि हजरत के यहां इतना ज्यादा नेमत की कदर थी कि किसी का लेटर आया, उस जमाने में फोन तो बहुत कम थे, लेटर से ही ज्यादा काम होते थे, तो किसी का लेटर आया तो लेटर में जो कागज होता है उसमें समझो कि आधा या आधे से ज्यादा लिखा हुआ है और नीचे चार पांच लाइन खाली है, तो हजरत फरमाते थे कि इसको काट लो इतना कागज जितना खाली है, और बहुत सारे कागजों में से इतने इतने कागज कटवा के हजरत रख देते थे। फिर कभी कोई चिट्ठी लिखनी हुई, कभी कुछ लिखना हुआ तो इतनी इतनी चिट्ठी के लिए भी कागज को बराबर हिफाजत से रखते थे। तो अल्लाह के नेक बंदों की यहां अल्लाह की नेमत की कितनी कदर थी कि मामूली मामूली कागज का टुकड़ा भी वो सलामत रखते थे और उसको इस्तेमाल में लाते थे और उसको काम में लाते थे। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा सुनाते थे, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी सवाल लेकर के आया कि मेरा ये सवाल है, मेरी ये जरूरत है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त इंतजाम नहीं था, सगवड़ नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि कोई सवाल करने आवे, हुजूर के पास अगर मौजूद होवे तो हुजूर दे देते थे, नहीं तो बहुत सी मर्तबा कहते थे कि बाद में मिलना, कभी कहते थे कि फुलाने के पास जाओ, किसी मालदार सहाबी के पास हुजूर भेजते थे कि जाओ उनके पास जाकर के ले लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सवाल करने आए تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ان کا سوال پورا کرنے کے لیے اسباب نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ان کو بہت مالدار بنایا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمائی ہوتے تھے, ڈبل جمائی, اس لیے ان کو ذن نورین کہتے ہیں کہ دو نور والے حضرت عثمان. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سے شادی ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا تو حضور نے دوسری بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرایا, اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان غنی سے میں نکاح کراتا. تو اللہ نے حضرت عثمان کو بہت مالدار بنایا تھا. تو حضور کے پاس اس وقت انتظام نہیں تھا, تو حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے یہاں, میرے نام سے کہنا, انشاءاللہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی. اب وہ سوال کے لیے جو آئے تھے وہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچے تو ان کو آواز آئی جو سوال لے کر گئے تھے ان کو, کہ حضرت عثمان اپنی وائف کو ڈانٹ رہے ہیں, ان پر ناراض ہو رہے ہیں اور کچھ بات ان کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے دھیان دے کر سنا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو, وائف کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں, کیوں ان پر غصے ہو رہے ہیں. تو بات دراصل یہ تھی کہ وہ زمانے کے اندر چراغ, دیوے گھر میں لائٹ روشنی کے لیے استعمال ہوتے تھے, تو بیوی نے چراغ کی روشنی کچھ زیادہ رکھی تھی. تو حضرت عثمان ڈانٹ رہے تھے کم کرو, کم میں بھی گھر میں کام چل جائے گا. تو یہ آدمی جو گئے تھے انہوں نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی جو اللہ کے نبی کی بیٹی, ان پر گرم ہو رہے ہیں چراغ اور دیوا زیادہ جلانے کے اوپر, تو میں تو بہت بڑا سوال لے کے گیا ہوں, اتنا بڑا سوال تو وہ کیسے پورا کریں گے. جو اپنی بیوی کو چراغ زیادہ جلانے کے اوپر ڈانٹے وہ میرا اتنا بڑا سوال تو کیسے پورا کریں گے. تو واپس آ گئے, حضرت عثمان کو آواز بھی نہیں دی اور ریکویسٹ بھی نہیں کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی نہیں دیا, واپس آ گئے. پھر کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ وہ کام ہو گیا تمہارا, تو کہا نہیں. تو کہا عثمان کے پاس گئے نہیں؟ کہا گیا تھا نا. تو عثمان کو کہا نہیں جا کر کے تم نے؟ کہا حضور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا لیکن میں واپس آ گیا. کہا کیوں واپس آ گئے؟ تو کہا وہ تو اپنے گھر میں چراغ اور دیوا زیادہ جلانے پر بیوی پر ناراض ہو رہے تھے, تو میں نے یہ سوچا کہ جو آدمی چراغ زیادہ چلانے پر بیوی کو ڈانٹے وہ میرا اتنا بڑا سوال اور ڈیمانڈ کیسے پوری کریں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے جاؤ, جاؤ حضرت عثمان کے یہاں. حضور نے بھیجا, اب وہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دیا اور اپنی جو ضرورت تھی وہ رکھی. تو بہت بڑی ان کی ضرورت تھی, بہت زیادہ پیسوں کی. حضرت عثمان نے فوراً نکال کر کے وہ سارے پیسے دے دیے. اب یہ آدمی حیران کہ ایک طرف بیوی کو چراغ کے بارے میں ڈانٹ رہے اور دوسری طرف میرا اتنا بڑا سوال انہوں نے پورا کر دیا. تو پھر ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ میں تو اس سے پہلے بھی حضور نے بھیجا تھا تو آیا تھا, लेकिन ये सुनकर के मैं तो वापिस ही चला गया था। तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी होती है वहां हम बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। जहां अल्लाह का हुक्म, जहां अल्लाह के नबी का हुक्म, जहां शरीयत का तकाजा, वहां बड़ी से बड़ी रकम हम खर्च कर डालते हैं, और जहां जरूरत न हो वहां जरा सा फालतू बेकार खर्च भी हम नहीं करते। बस ये चीज हमें सीखनी है अपनी जिंदगी के अंदर। घर में अगर एक लाइट से काम चलता तो दो लाइट खामोखा मत जलाओ। घर के अंदर जो है जितनी जरूरत से काम चलता हो इतने में काम चलाओ। ये इसराफ से बचना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग जो पैसों की तकलीफ के अंदर है वो इसराफ की वजह से हैं, फजूल खर्ची की वजह से हैं, कि उन्होंने खर्च के अंदर जो है एहतियात नहीं किया तो सारी दौलत हाथ से निकल गई और वो बिल्कुल कंगाल और खाली हाथ हो गए। इसीलिए आदमी को बहुत सोच समझ करके जरूरत के मुताबिक खर्च करना चाहिए। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। पैसे उड़ाओ मत, दौलत को उड़ाओ मत। जो लोग पैसों को गलत काम में उड़ाते हैं, गुनाह के काम में उड़ाते हैं, नाजायज और हराम काम में लगाते हैं, वो शैतान के भाई हैं। देखो जो जायज काम है, जरूरत के काम है, उसमें जरूरत से ज्यादा खर्च करना इसराफ है, और जो नाजायज काम है, गुनाह के काम है, उसमें तो थोड़े से पैसे लगाना ये भी गलत और गुनाह का काम है। इसीलिए हम लोग बहुत संभाल संभाल करके दौलत को इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत बड़े हमारे यहाँ मौलाना थे, अल्लाह ने उनको माल से भी बहुत नवाजा था। वो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे और कहते थे कि पांच रुपये, दस रुपये, पांच डॉलर, दस डॉलर, ये छोटी रकम है लेकिन वो भी बचा करके किसी गरीब को हम सदका दे सकते हैं। और जिस गरीब के घर के अंदर इतनी छोटी सी रकम भी पहुंच गई तो उस गरीब के लिए तो ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है कि हम पैसे थोड़े थोड़े भी बचा करके, बचत करके अगर किसी गरीब को सदका दे देंगे तो उस सदके की बरकत से एक गरीब का एक वक्त का खाना हो जाएगा, उसके कपड़े हो जाएंगे, उसके लिए राहत का जरिया बन जाएगा। इसलिए घरों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर इसराफ और तबजीर उड़ाना दोनों से बचने की बहुत जरूरत है। इस जमाने का ये भी एक बड़ा फितना है कि मुसलमान अपने माल को जायज काम के अंदर जरूरत से ज्यादा खर्च कर डालते हैं और गुनाह के काम के अंदर भी खर्च कर डालते हैं। दौलत को अल्लाह की नेमत समझो, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और वो दौलत वाली नेमत जिसके पास नहीं होती है उसको समझ में आता है कि ये पैसे कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हम सबको ये माल दौलत वाली नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उसको उड़ाने से, बर्बाद करने से, जाए करने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।